ओम शांति। हम सभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठे हैं और स्वयं परमात्मा हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए चार सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इन चारों सब्जेक्ट का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जितना बुद्धि में ज्ञान बैठता है उतना हमारा योगाभ्यास आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे योगाभ्यास आगे बढ़ता है दिव्य गुणों की धारणा हमारे जीवन में होने लगती है, और जैसे जैसे दिव्य गुणों से हमारा जीवन भरपूर होने लगता है तो हमारे जीवन के द्वारा ऑटोमेटिक सेवा होती रहती है। तो इन चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट योग का है। हमारी जो रेस है वो योगाभ्यास में है। इस यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स होंगे, इस यूनिवर्सिटी के जो चैंपियंस होंगे वो होंगे योगी आत्माएं। क्योंकि हम देखते हैं शास्त्रों में जितनी महिमा भगवान की गई है, योगियों के महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्यों इतनी महिमा योगी आत्माओं की है? क्योंकि योगी आत्माएं इस संसार के पालनहार कहलाते हैं। वो परमात्मा से खजाने लेते रहते हैं और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहते हैं, उनकी पालना करते रहते हैं। बाबा कहते हैं, योगी बच्चे मेरे सच्चे सहयोगी, निरंतर सहयोगी बच्चे कहलाते हैं। क्योंकि योगी आत्माएं अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा निरंतर इस वायुमंडल में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं और स्थापना के कार्य में मददगार बनते रहते हैं। बाबा हमें बहुत वरदान देते हैं, अनेक वरदान देते हैं। तो वरदानों के सागर बाबा से सर्वश्रेष्ठ वरदान हमें कौन सा मिलता है? योगी भव का वरदान हमें मिलता है। ये सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं। तो जिनों को योगी भाव का वरदान प्राप्त होता है उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य हो कि योगी भाव का वरदान मैंने बाबा से प्राप्त करना ही है। हम बच्चे बाबा के सभी हैं, हम सभी को वर्षा मिलता है, लेकिन योगी बच्चे संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। क्योंकि वो परमात्मा का दिल जीत लेते हैं और जो भगवान का दिल जीत लेते हैं परमात्मा सारे खजाने लुटा देते हैं। तो इसलिए बाबा से हमें पूरा वर्षा भी लेना है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आवश्यकता है योग की, विभिन्न स्टेजेस की जानकारी प्राप्त करना, अच्छी तरह से समझना। मुख्य रीति से योग की तीन स्टेजेस होती हैं। रूह रिहान करना पहली स्टेज, दूसरी है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना, और तीसरी स्टेज है बीज रूप स्थिति की अनुभूति करना। तो ये जो पहली जो स्टेजेस हैं, इन दोनों स्टेजेस के द्वारा विकर्म हमारे भस्म नहीं होते हैं, लेकिन उससे लाभ हमें क्या मिलता है, उसके आधार से हमारे विकर्म नए बनते नहीं हैं। और दूसरी बात, जैसे विकर्म नहीं बनते हैं, लेकिन तीसरी जो स्टेज है, बीज रूप जो स्टेज है, उसके लिए हमारी पूर्व तैयारी हुई रहती है। तो इसलिए इन दोनों स्टेजेस का अभ्यास भी बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। तो रूह रिहान करना, अर्थात रूह समझकर रिहान अर्थात बाबा से बातें करना। आप सोचेंगे, जिसने हमें ब्राह्मण जन्म दिया है, जिसने हमें ब्राह्मण जीवन दिया है, जो हमारी पालना कर रहे हैं, उसके बारे में एकांत में बैठकर बातें करना बहुत इजी होता है और उसमें हमारा लंबा समय बीत सकता है। तो मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर में विराजमान हूं और बाबा निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान हैं और आपस में बहुत दिल से प्यार से बातें कर रहे हैं। तो बातें करते करते, रूह रिहान करते करते क्या होता है, प्यार का परसेंटेज बढ़ता जाता है और संकल्पों का नंबर धीरे धीरे घटने लगता है। तो जब हम रूह रिहान में मस्त हो जाते हैं, तो प्यार का प्रतिशत बढ़ने से हमें स्थूल देह का भान भूल जाता है और उसके कारण हम ऊपर की ओर चले जाते हैं, सूक्ष्म वतन की ओर चले जाते हैं और सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बैठ जाते हैं। मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में हूं और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हैं और आपस में बहुत दिल से बातें कर रहे हैं, रूह रिहान कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इसमें प्यार का और परसेंटेज बढ़ता जाता है, तो हमें जो लाइट का शरीर है उसका भान भी भूल जाता है और हम ऊपर की ओर चले जाते हैं और स्वयं को परम धाम में मैं ज्योति बिंदु आत्मा और परम ज्योति शिव बाबा आमने सामने बैठकर मधुर मुलाकात करते हैं। अभी ये जो याद की यात्रा हमने की, उसमें क्या होता है, संकल्पों का नंबर कम होता जाता है और प्यार का परसेंटेज बढ़ता जाता है। मान लीजिए पहले मिनट में आपके मन में चार संकल्प थे, आप उसमें रूह रिहान में मस्त हो गए तो चार से तीन हो गए और स्थिति में खो जा रहे हैं तो तीन संकल्पों से दो संकल्प हो गए और प्यार में खो गए हैं तो आखिरी लास्ट संकल्प होगा परम धाम में स्थित होकर कि केवल बाबा से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है, ऐसा केवल अनुभव होता है, उसको बीज रूप स्थिति कहते हैं। इसका नाम बीज रूप स्थिति क्यों है? इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज है आत्मा और मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है परमात्मा। तो हम दोनों आमने सामने बैठते हैं और हमारे मन में बहुत कम संकल्प चलते हैं, अर्थात बीज में हम स्थित हो जाते हैं और ऐसा लगता है बाबा से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। तो इसमें योग की अग्नि प्रज्वलित होती है और उसमें विकर्म मेरे भस्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव हमें उसमें होता है। मुझे याद है यहाँ इसी मेडिटेशन हॉल में हम मधुबन निवासी बाप दादा से मिल रहे थे, तो मुरली के बाद बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा कैसे समझें मेरी याद शक्तिशाली है या नहीं। तो बाबा ने उत्तर दिया था, शक्तिशाली याद की दो निशानियां होती हैं। शक्तिशाली याद में एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है, उस अग्नि में मेरे विकर्म भस्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव भी हमें होता है, और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति हमें होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि विकर्मों का बोझ सिर पर से कम होता है, उसके कारण हल्केपन की महसूसता होती है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हमारी प्रोग्रेस होती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए हमें खुशी की अनुभूति भी होती है। तो ऐसी शक्तिशाली बीज रूप स्थिति जब होती है तो उसके बाद ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति की अनुभूति हमें होती है। पावरफुल बीज रूप स्थिति को ज्वाला स्वरूप स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ज्वालामुखी धरती से फटती है, उसमें कोई भी कठिन चीज संपर्क में आती है वो फट से जल जाती है, भस्म हो जाती है। तो ऐसे जब शक्तिशाली योग करते हैं तो उसमें योग की ज्वाला धधकने लगती है, उसमें हमारे विकर्म भस्म हो रहे हैं, हमारे 63 जन्मों के जो कठोर संस्कार हैं वो परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमें होने लगती है। तो हमें क्या करना है? बैठक का योग में ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति करना है। और चलते फिरते जब हम योग का अभ्यास करते हैं उसमें रूह रिहान या फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम कर सकते हैं, क्योंकि कर्म करते समय हमारा ध्यान कर्म पर होता है, इसलिए पूरा ध्यान योगाभ्यास में हम एकाग्र नहीं कर सकते हैं, इसलिए हल्की फुल्की याद हमारी रह सकती है, इसलिए विशेष हमें ध्यान देना है। कर्म करते समय रूह रिहान या फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाते जाना है। और जब बैठक का हम योग करते हैं, नमाज शाम के समय या अमृत वेले के समय, उस समय योगाभ्यास में संपूर्ण एकाग्रता हम मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमें ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति हो सकती है, होती ही है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हमारे मन में थोड़ा सा संशय आता है कि पता नहीं, मैं तो नया बच्चा हूं और परमधाम कितना दूर है, और परमधाम के कौन से कोने में शिव बाबा बिंदी बैठा है, तो मेरी याद बाबा तक पहुंचती होगी या नहीं, ये कभी कभी संशय आता है। आता है भाई कभी कभी? हाँ जी आता है, बोलो आता है। मुझे 3 वर्ष तक ये संकल्प आता था, उसके कारण योगाभ्यास में मुझे रुचि नहीं होती थी, इतनी मजा नहीं आता था। लेकिन जब 77 में मैं बाबा से हिस्ट्री हॉल में पर्सनली मिल रहा था, तो बाबा ने दृष्टि दिया, फिर कहा कि आपका योग का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडव में आगे है, ये दो महावाक्य बाबा से मैंने सुने तो मुझे इतनी खुशी हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं था। क्यों खुशी हुई? क्योंकि जिसको मैं याद कर रहा हूं वो खुद ही कह रहे हैं कि आपका याद का चार अच्छा है, इसका मतलब मेरी याद बाबा तक पहुंचती थी, उसका कंफर्मेशन मुझे मिल गया। उसके बाद मेरे मन में कभी भी ये संशय नहीं आया, क्योंकि ये सारा संसार जो है गतिमान एक ही सिद्धांत के आधार पर चलता है। हरेक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे हम यहां बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा को याद करते हैं तो हमारी याद, हमारा संकल्प उस आत्मा पर ठका होता है और वहां तक याद पहुंच जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेली जो माताएं होती हैं, जो मारे खाती हैं और तड़प तड़प के मुझे याद करती हैं, तो वो बाबा को याद पहुंचती है तो बाबा की आंखों में आंसू आते हैं, तो बाबा उनको एक्स्ट्रा शक्ति देते हैं, सकार देते हैं और स्नेह भी देते हैं, ताकि वो उस समस्या का, सिचुएशन का सहज सामना कर सकें। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करती हैं, क्योंकि उनकी याद जो है वो तड़पाने वाली होती है, शक्तिशाली होती है। इसलिए एक स्लोगन कभी भी हमें नहीं भूलना है, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा बढ़ती रहे। हमें चेक करना है दिन प्रतिदिन प्रेम की मात्रा मेरी बढ़ रही है या नहीं, ये चेक करते जाना है और दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाने का प्रयास करते जाना है। क्योंकि क्या है, हमारा जो प्यार है अनेक संबंधों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, वैभव के पीछे बिखरा हुआ रहता है, बटा हुआ रहता है। इसलिए उस प्यार को हमें बटोरना है और एक बाबा पर केंद्रित करना है, तो ऐसा करने से हमारी याद शक्तिशाली होती जाती है। योग को योग क्यों कहते हैं भाई, बताओ? दूसरा शब्द लोगों को मिला ही नहीं है जी। योग उल्टा क्या है? गयो। देखो योग में जब बैठते हैं ना, योगियों की आंखें हमेशा आधी खुले दिखाते हैं, पूरी खुले भी नहीं दिखाते हैं, पूरी बंद भी नहीं दिखाते। क्यों आधी खुले दिखाते हैं? क्योंकि योगी आत्माएं इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, उनका तीसरा नेत्र जो है बहुत दूर अपने इष्ट की याद में खोया रहता है, उनकी आंखें बताती है वो यहां नहीं है। ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत थे, बाबा को कोई झोपड़ी में मिलने के लिए जाता था तो बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता था, बाबा केवल तन से यहां बैठे हैं, बाबा मन से 100% पूर्णतया शिव बाबा के पास परम धाम में बैठे हैं, बाबा की आंखें बताती थी। समझा? योग को याद भी कहते हैं। याद क्यों कहते हैं भाई? याद उल्टा क्या है? दया। देखो दया के सागर के हम बच्चे हैं और याद से हमारी कमाई होती है। कमाई कितनी होती है भाई बताओ? हाँ जी, एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती है। दुनिया में इतनी कमाई किसी की भी नहीं होती है, केवल बाबा के बच्चों की ही होती है। बिल्कुल बेहिसाब कमाई हमारी एक सेकंड में होती है। अगर मैं याद नहीं करता हूं बाबा को तो मतलब है मैं स्वयं पर भी दया नहीं करता हूं। अब स्वयं पर जो दया नहीं करता है वो दूसरों पर क्या दया करेगा भाई। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना स्वयं पर दया करते हैं, स्वयं को खजानों से मालामाल करते हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। इसलिए हर एक सेकंड, ये घड़ी का ये जो टिक टिक चल रही है ना, वो टिक टिक क्या कह रही है? ठीक ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। भाई ठीक कब होंगे? जब हमारी कमाई अच्छी होगी तभी तो ठीक होंगे ना। तो हर एक सेकंड कहता है बाबा के साथ सेखन करते रहो। सेखन करना माना अपना बुद्धि रूपी हाथ बाबा के बुद्धि रूपी हाथ में देना, अर्थात बाबा से कनेक्शन जोड़ना। जैसे कनेक्शन जुड़ जाता है शक्तियों का कलेक्शन आत्मा में होना शुरू होता है। अमृत वेले सफल योग किसको कहते हैं भाई? मेरा अमृत वेले बहुत सफल योग रहा। ऐसा कब कह सकते हैं हम? योगाभ्यास के बाद आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हुई है, मैंने बाबा से बहुत शक्तियां प्राप्त की हैं, ऐसी अनुभूति होना अर्थात सफल योगाभ्यास करना। उस समय शक्तियों की प्राप्ति हमें हो रही है, ऐसा अनुभव करना हमें जरूर है। क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज उस समय हम करते हैं। भाई आत्मा रूपी बैटरी को हम चार्ज करते हैं, डेली करते हैं। डेली करना क्यों जरूरत है भाई? हाँ जी, आत्मा रूपी बैटरी को डेली चार्ज करना क्यों जरूरी है? अच्छा, डिस्चार्ज हो जाएगी। देखो मोबाइल की बैटरी को एक दिन भी अगर चार्ज नहीं करेंगे चलेगा मोबाइल? बंद हो जाएगा। कितना भी महंगा मोबाइल है ना, कोई काम का नहीं। ऐसे शरीर रूपी मोबाइल का आत्मा रूपी बैटरी है, इस बैटरी को चार्ज हमें जरूर करना है। बाबा जो सर्व शक्तियों का पावर हाउस है, उस पावर हाउस से कनेक्शन हमें जोड़ना है। कनेक्शन होते ही आत्मा में शक्तियां आती रहती हैं। तो होता क्या है, सारे दिन भर में हमारे मन में कितने संकल्प चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है, एक मिनट में हमारे मन में कम से कम 13 से 15 संकल्प चलते हैं। अब 24 घंटे में कितने संकल्प चलते होंगे आप सोचो, हजारों। तो आत्मा की ऊर्जा कितनी खर्च होती है। तो क्या होता है, अमृत वेले नुमा शाम के समय थोड़ी सी शक्तियां हम बाबा से जरूर लेते हैं, लेकिन सारे दिन भर में उसको यूज भी कर लेते हैं। तो क्या होगा भाई, जितना कमाया उतना खर्च हो गया, बैलेंस तो है ही नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है वो शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। जो बहुत होशियार बिजनेसमैन होता है ना, वो 3 बातें हमेशा चेक करता है। कौन सी? कितना मेरी कमाई है, अर्निंग मेरी कितनी है, और कितना मेरा खर्च है, स्पेंडिंग मेरी कितनी है, और सेविंग मेरी कितनी है। तो अर्निंग हमारी बहुत अच्छी तरह से होगी और खर्च बहुत कम होगा तो सेविंग हमारा बहुत होगा। तो शक्तिशाली याद से सेविंग हमारी बहुत अच्छी तरह से होती रहती है। तो बाबा कहते हैं खजानों को जमा करो, लेकिन ये जमाना कैसा है, हाँ जी, ये जमाना कैसा है, जमा ना, ये जमा होने ही नहीं देता है। हमारी बुद्धि को इधर उधर सारे दिन भर में अपने तरफ खींचता रहता है, डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, बाबा से बुद्धि रूपी तार जोड़ने के लिए नहीं देता है, तो भाई कैसा जमा होगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, दुनिया में रहते हुए बुद्धि हमारी हमेशा न्यारी प्यारी रहे, डिटैच रहे, उसके लिए एक युक्ति को अपनाना है। कौन सी युक्ति को, हाँ जी, ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर हमें सारे दिन भर में रहना है। ईश्वरीय नशे की अनुभूति होगी तो माया हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी, माया हमें लुभा नहीं सकेगी। अपने जो भी वैभव है, उसके साधन है, उसके द्वारा हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी, क्योंकि ईश्वरीय नशे में जो मस्त रहता है ना, वो ये दुनिया के जो भी प्रलोभन है उसमें फंसता नहीं है, उसमें वो आकर्षण मन बुद्धि को होने नहीं देता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे की कवच पहनकर हमें रहना है और बहुत मस्ती में मस्त रहना है, ठीक है ना। तो याद का चार्ट हमें रखते जाना है। मैं 73 में हिस्ट्री हॉल में बाबा से पहली बार मिल रहा था, तो बाबा ने मुझे कहा था, अगर ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट रखते जाना। अब मैं 1 साल का बच्चा था, अब क्या याद का चार्ट होता है कुछ पता नहीं। तो मैं जब यहां आया 77 में, तो मैंने चार्ट दादियों के क्लासेस सुनकर, बाबा की मुरलियों को सुनकर चार्ट बनाया, हर एक घंटे की अलग अलग एक्सरसाइज करके, और वो चार्ट मेंटेन करना शुरू किया। तो बाबा ने मुझे कहा, आपका याद का चार्ट अच्छा है। क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए चार्ट रखना बहुत जरूरी है। चार्ट रखने से क्या होता है, मन और बुद्धि पर हमारा अटेंशन बढ़ता है। अटेंशन है तो याद है, अटेंशन भूल गया तो याद भूल गए। तो इसलिए अटेंशन की पावर सबसे बड़ी पावर है, इसलिए ये जो याद का चार्ट है हमारा अटेंशन बढ़ाता जाता है, किस पर, मन और बुद्धि पर। दूसरी बात, ये जो याद का चार्ट है ये मन और बुद्धि पर डिसिप्लिन कैसे रखना है वो हमें सिखाता है, उनको कैसे नियंत्रण में रखना है और कैसे अनुशासन में रखना है, ये चार्ट हमें सिखाता है। सतयुग में राजा महाराजा जो बनते हैं उसका आधार क्या होता है, संगम युग में जो स्वराज अधिकारी बनते हैं वही विश्वराज अधिकारी सतयुग त्रेता में बनते हैं। लेकिन अभी अपनी मन और बुद्धि पर नियंत्रण और अनुशासन अच्छी तरह से रखना चाहते हैं तो इसके लिए याद का चार्ट हमें बहुत मदद करता है। इसलिए भले हर घंटे का लिखे हम, जास्ती याद नहीं भी रहे तो भी हर्जा नहीं, लेकिन लिखने से क्या होता है, धीरे 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 हमारा अटेंशन मन बुद्धि पर बढ़ता है और योगाभ्यास भी अच्छी तरह से आगे बढ़ता जाता है। अभी बाबा कहते हैं एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई होती है। क्या ये सच है? एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई होती है या नहीं होती है भाई बताओ? कैसे होती है बताओ? एक घंटे से मैं योग में बैठा हूं यहां, फिर देखता हूं भाई मेरा जेब तो खाली है, कुछ है ही नहीं मेरे जेब में, तो ऐसे कैसे इतनी अनेक पद्मों की कमाई हो रही? बाबा कह रहे हैं, अब बाबा कह रहे हैं वो तो सच होना ही है, बाबा तो सत्य कहते हैं, लेकिन किस रूप में हो रही है, कैसे हो रही है, इसको हमें समझना है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखो जैसे हम परम धाम में जाते हैं, परम धाम में रेस्ट करने के बाद जैसे नीचे आते हैं, आते ही किसी का जन्म राजा महाराजा के पैलेस में होता है और किसी का जन्म बिल्कुल साधारण प्रजा नौकर चाकर के घर में होता है। ये भिन्नता क्यों है भाई? ऊपर कोई पता बताता है क्या परम धाम में कि भाई आपको है ना वहां जन्म लेना है? ऐसा तो नहीं बताता है ना। इसका भाव ये है, जो आत्माएं संगम योग में बाबा को बहुत याद करते हैं तो याद से हमें क्या मिलती है? शक्तियां मिलती है। तो मन और बुद्धि पर नियंत्रण करने की और अनुशासन करने की ये दो शक्तियां हमारी बढ़ती है, और जिनकी ये शक्तियां जितनी होती हैं उनको उतना बड़ा स्टेटस सतयुग में मिलता है। राजा है, थोड़ी सी शक्तियां हो उसके पास, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर बहुत ज्यादा है तो वह महाराजा बनेगा, उससे भी ज्यादा है तो वह विश्व महाराजा बनेगा। तो हमें योगाभ्यास के द्वारा क्या होता है? शक्तियां प्राप्त होती है। वो शक्तियां प्राप्त करके हम परम धाम में जाते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं और राजा महाराजा के घर में जन्म लेते हैं, जहां अनाप शनाप बेहिसाब प्रॉपर्टी होती, क्या सोना क्या हीरे मोती कोई हिसाब नहीं, इतनी प्रॉपर्टी इतनी कमाई कैसे हमें प्राप्त हो गई भाई? किसने हमें दी? कब दी? क्यों दी? जवाब आता है योगाभ्यास के द्वारा। जो योगाभ्यास करते हैं शक्तियां प्राप्त करते हैं, उनको ऊंचा स्टेटस मिलता है, और जो नहीं करते हैं, जिनके पास शक्तियां नहीं होती हैं, वो साधारण प्रजा के घर में जन्म लेते हैं और धन संपत्ति भी उनके पास कम ही होती है। तो कहने का मतलब है ये बिल्कुल सत्य है, एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती जाती है। तो हमें इसमें लोभी बनना है, ये शुद्ध लोभ है, मेरी कमाई होती रहे बढ़ती रहे, खजाने बढ़ते रहे। तो जितने खजाने हमारे पास हो गए, हम माला माल हो गए, हम अनेक आत्माओं को वो खजाने बांट सकेंगे और अनेक आत्माओं का भला हम कर सकेंगे। लेकिन खजाने पाने की एक कंडीशन है, ये खजाने पाना है तो क्या कंडीशन है? खुद में और खुदा में खो जाना पड़ेगा। खो जाना आता है तो खजाना मिलता है। भी सागर के लहरों में लहराने से तो क्षणिक आनंद मिलेगा, लेकिन माल तो हीरे माणिक मोती तो सागर के तले में है। तो प्यार के सागर के तले में जब हम खो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो बहुत सुंदर गहन अनुभव के हीरे माणिक मोती हमें मिलते रहते हैं। तो इसलिए हमें खुद में और खुदा में खो जाना ये सीखना होगा, और विशेष शक्तिशाली योगाभ्यास को भी बढ़ाते रहना होगा। लेकिन एक बात याद रखना है, अगर शक है तो शक्ति नहीं है। खुद पर थोड़ा शक है, बाबा पर थोड़ा शक है, ड्रामा पर शक है, तो शक्ति नहीं मिलेगी। पूरी आत्मविश्वास के साथ हमें बैठना है और बाबा से शक्तियां लूटना है और लुटाते रहना है। ठीक है, ओम शांति।
से भर लीजिए, शांति से भर।